आयमा अलैहिस्सलाम की जो सियासी और इज्तिमाई जिद्दोजहद है कि बुनियादी तौर पर जो है ज़मीन खुदा पर खुदा के निज़ाम की हाकिमियत की कोशिश है, ये मरकजी थीम है। इसको लेकर जो है सारी गुफ्तगू हो रही है। इसमें एक नई, जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत से हमें नई टर्मिनोलॉजीज या नई जो है जाविये फिक्र के हमें बहुत सी जगहों में नजर आएंगे, और उसमें एक ये है कि जैसे आज तक हम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन की जो टर्मिनोलॉजी है वो किस मीनिंग्स में इस्तेमाल हम आम तौर पे होता रहा है या हो रहा है, रहबर इसकी एक और तरीके से तकरीबन पेश कर रहे होते हैं या मुतवज्जे हमें कर रहे होते हैं। फरमाते हैं कि देखें, इस्लामी निज़ाम में मौजूद एक जो सिस्टम है वो एक ऑटो सिस्टम है, एक खुदकार निज़ाम है। खुदकार इस मीनिंग में कि किसी भी किस्म के खतरात का खुदकार अंदाज से मुकाबला करता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नेचुरल जो है परवरदिगार आलम ने एक सिस्टम रखा है कि ये किसी भी खतरे को भांपने के बाद खुद से अपनी कोशिश शुरू करता है। जो मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो लोग हैं वो बेहतर अंदाज से इस चीज को समझते हैं। कह रहे हैं कि इस्लाम में भी बिल्कुल इस तरह का एक निज़ाम मौजूद है कि अगर इसे कोई खतरा बाहर से लाख हो जाता है, फिक्री एतबार से, सियासी एतबार से, दूसरे हवालों से, तो ये ऑटो सिस्टम खुद ब खुद इसका खुदकार हो जाता है, फ़ाल हो जाता है। अलग बात है कि बाद में जो है मसाइल पैदा हो जाना एक दूसरी पहलू है, लेकिन खुद इस्लाम के अंदर उस बैरूनी हमले को कबूल करने की जो सलाहियत है वो नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं करता, उसको धकेलता है, बाहर निकाल फेंक देता है, जैसे बाज़ उलमा कहते हैं कि वो उगल देता है उसे। दूसरी जानिब क्योंकि इस्लाम जो है एक कुव्वत और ताकत का की अलामत भी है, लिहाजा खतरात इसलिए भी उसके लिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इस्लाम एक ताकत और कुव्वत अता कर रहा होता है, और दीगर जो ताकतें और कुव्वतें हैं वो, और खासकर जो मफाद परस्त अनासिर हैं, उनके लिए ये जो है एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ जाता है, और जाहिर है फिर वो खतरा बनकर इस्लाम की तरफ आ जाते हैं। बैरूनी दुश्मन की रहबर जो तारीफ फरमा रहे हैं उसमें ये कि बैरूनी दुश्मन वो नहीं है जो सरहदों के उस तरफ से हमले करता है, या जोग्राफियाई तौर पर हमारी सरहद से बाहर जो मौजूद है दुश्मन, वो दुश्मन नहीं है, बल्कि बैरूनी दुश्मन वो है जो इस्लाम से बाहर का दुश्मन, यानी जो उसी जोग्राफिया में रहता हो, उसी टेरिटरी के अंदर रहता है। मुमकिन है कि उसी इस्लामी निज़ाम और सिस्टम और हुकूमत के अम्ब्रेला के नीचे रहता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके खिलाफ हमेशा साजिश बुनता रहता है, ये बैरूनी दुश्मन है क्योंकि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, टेरिटरी और जोग्राफिया में रहने से वो क्या कहते हैं अंदर का आदमी नहीं होगा, बल्कि वो बाहर का आदमी है, बैरूनी दुश्मन है, इस्लाम के अंदर का दुश्मन नहीं है। एक और जो इसी के साथ अंदरूनी दुश्मन की जो इस्तेमाल की है वो ये है कि किसी भी निज़ाम और सिस्टम का अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाना, इंतशार का शिकार हो जाना, और या उस निज़ाम का जो हिस्सा है, जो लोग अफराद हैं, जो मरकजी दायरे के लोग हैं, जो मरकजी रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिनके हाथ में तकरीबन लीडिंग रोल होता है, वो उकता रहे होते हैं आप उसी निज़ाम से, उस निज़ाम के कवानीन से, उस निज़ाम के सिस्टम से, उसमें मौजूद जो इंसाफ और अदालत पर मबनी एक मैकानिज्म है उससे उकता गए हैं। अब वो कह रहे हैं यार कुछ ज्यादा ही इंसाफ हो रहा है, थोड़ी बहुत जो है ना मुराआत और ये वगैरह वगैरह, यानी दूसरे अल्फाज में अखलाकी बुराइयों के शिकार होते हैं, ख्वाहिशात का गलबा उनके ऊपर होने लग जाता है। ये अंदरूनी खतरात हैं जो किसी भी वक्त हो सकता, हम आज भी हमें ये चीजें मुख्तलिफ जगहों में चीजें नजर आती हैं। फिर एग्जाम्पल देते हैं, हिस्टोरिकली जो सिचुएशन बनी है इस्लामी पोलिटिकल मूवमेंट को उस पूरे अरसे में, फरमाते हैं कि देखें पैगंबर इकरामी इस्लाम के जमाने में एक अकदार के ऊपर एक सोसाइटी तश्कील पाई थी, इस्लामी वैल्यूज के ऊपर पैगंबर ने एक सोसाइटी तश्कील दी थी और लोग उसी में डल गए थे। लोगों के लिए अब वो तकलीफदेह चीज नहीं थी, मुराद न मिलने से लोग परेशान नहीं हो रहे थे, इम्तियाजी सलूक खत्म होने से लोगों को तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे कि इंसाफ है, बराबरी है, एक बेहतरीन सोसाइटी तश्कील पाई है, ईमान से लबरेज थे लोग, अमल से लबरेज थे लोग। लेकिन हुआ क्या कि पैगंबर के बाद 10 सालों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ईमान और अकलानियत के ऊपर ख्वाहिशात ने गालिब आना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और वो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिशात के गुलाम बन गए। मसलन एक एग्जाम्पल देते हैं कि हुजूर पाक के दौर में हक महर जो हुआ करता था आम तौर पर वो 480 दरहम था, जो कि हम 10 साल में आस्ता आस्ता जो हुजूर के सहाबी थे उसको 10 लाख जो है मिसकाल सोना बना दिया। एग्जाम्पल जैसे जुबैर इब्ने मुसअब या वही जो है जुबैर सैफुल इस्लाम कहलाते थे, उनकी एग्जाम्पल देते हैं कि जो सैफुल इस्लाम का टाइटल रखते थे हुजूर पाक के जमाने में, उसकी सूरत हाल ये है कि वो अब 10 लाख चले गए, कहाँ 480 दिरहम और कहाँ 10 लाख। यानी मादियात जो है इम्पोर्टेंट अख्तियार कर रही है, उसकी एक पोजीशन बन रही, उसके हुसूल के लिए आदमी तगोदो करता है, प्लान कर रहा है कि किसी भी तरीके से जायज नाजायज तरीके से उसको फोकस किया हुआ है उसने, खुसूसी मुराआत के क्या कहते हैं हासिल करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल ओहदों की तकसीम में, माले गनीमत की तकसीम में, सोशल स्टेटस और प्रोटोकॉल्स और इस तरह की चीजें जो है ना, वो जो फाका शिकन थे वो फाका शिकन जो है अब फाका शिकन नहीं रहे हैं, उनके अंदर बड़ी तब्दीलियां आती जा रही हैं। मिसाल देते हैं तलहा इसी साद इब्न अबी वकास जैसे बड़े जो सहाबी का शुमार सहाबियों में शुमार होता था इस्लाम के आगाज में, और आस्ता आस्ता देखें कि ये जो बड़े सहाबी थे जो एक काज के लिए हमेशा भागते थे, एक टाइम आया कि ये उसी सोसाइटी के सबसे बड़े सरमायेदार बन गए, और यानी ये बजाय इसके कि इखलाकी कदरों और इसमें इन्होंने उनको ऊपर आना चाहिए था, ठीक है अपनी मेहनत से सरमायेदार बने हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन करप्शन के रास्ते से ये उस सोसाइटी के टॉप के जो है सरमायेदारों में शुमार होने लग गए। कह रहे कि ये जो सिस्टम की अंदरूनी खराबी है, अंदर से टूट फूट हो गया निजाम, अब ये सिस्टम वो प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, अफरादी वो कुव्वत सामने नहीं ला रहा है जो कि बद्र ओहद तो खंदक व खैबर इन चीजों में हमें मुशाहिदा हो रहा था, आगाज इस्लाम में जो प्रोडक्शन हमें नजर आ रही थी ह्यूमन वो नजर नहीं आ रही है। सिस्टम अब जो भी सामने ला रहा है, सिस्टम से गुजर के जो भी आता है वो क्रिप एक बंदा सामने आ रहा है। इस गुफ्तगू के बाद फिर आगाज करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कयाम का जो के अहदाफ हैं। मुझे याद है मैं ईरान में स्टूडेंट था और आपने आशुरा से पहले मुबल्लिगीन के लिए एक गुफ्तगू फरमाई थी, और बहुत सारे जो है हमारे जो मुहर्रम से रिलेटेड मौजूआत थे उनको डिस्कस किया था, बाज ऐसी रेड लाइंस जो कि सोसाइटी ने अपनी तरफ से खुद साख्ता रेड लाइंस बनाई हुई थी और उलमा भी उस रेड लाइंस को ख्याल रखते थे, उन सबको तोड़ दिया था रहबर ने, और बहुत से लोग घबराए हुए थे, कह रहे थे जी कि सारी रेड लाइंस तोड़ दिया रहबर ने, कमजनी के हवाले से भी गुफ्तगू की, बाकी भी जो बाज मसलन चीजें हैं जो मुहर्रम में होती हैं, तो बड़ा जो है उसको गुफ्तगू की और कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। और उस दौरान एक मौजू आपने छेड़ा, शायद ये मौजू इससे पहले हो लेकिन हाईलाइट नहीं हुआ, बिखरा रहा, फोकस करके किसी ने इसको पिन पॉइंट करके डिस्कस नहीं किया कभी, इसके मौजू के ऊपर किताबें नहीं लिखी गई, वो था कि आशुरा से इबरत हासिल करना, इबरत हाय आशुरा। मुझे याद बाद में वो आपकी जो तकरीर थी वो एक किताब की शक्ल में, किताबचे की शक्ल में सामने आई, और उसके बाद धड़ाधड़ इस मौजू के ऊपर किताबें और खिताबात और तकरीरें और गुफ्तगू और कॉन्फ्रेंसें होने लगी, और इतना एक वसी करबला का जो मैसेज था जो पोशीदा था बिल्कुल छुपा हुआ था, तवज्जो नहीं थी, जो सोसाइटी के लिए बड़ा अहम इंपॉर्टेंट था वो सामने आने लगे, और भी इस तरह के बहुत सारे पहलू हैं। तो यहां भी आगाज किससे कर रहे हैं इस किताब के अंदर, फरमाते हैं कि चंद माह का जो आपका सफर था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, हजारों किस्म के इबरत के दर्स अपने अंदर समोए हुए है, ये चंद माह का जो सफर है। इबरत का दर्स जो फर्द और समाज यानी इंसान साजी और माशरा साजी दोनों में इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, कह रहे कि ये इस पहलू के ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वाकई की जो के हवाले से भी जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किस तरह करबला के बारे में, वो काफी डिफरेंट किस्म के जाविये हैं। मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के वास्ते दो चार जुमले कह रहे हैं कि इमाम से शुरू में मदीने में एडवाइस दिया जा रहा था कि क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है इमाम की मक्का और मदीने में वेस्तला जो है एक शिनाख्ता शुदा मारूफ पॉपुलर माने हुए रिस्पेक्ट करते हैं लोग आपकी, और इसी तरह जो है इस्लामिक टेरिटरी जो जुग्राफिया है उसमें यमन के में आपकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आपको एक्सेप्ट करने वाले आपके लिए जान देने वाले बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि या आप मदीने और मक्के में रहें या फिर आपको यमन में जाना चाहे जहां पर आपकी ज्यादा फॉलोइंग है, या फिर किसी थर्ड जो है उसको इंतखाब करना चाहिए ताकि जो है जहां आपकी शख्सियत की कम से कम कबूलियत मौजूद हो, और या फिर यह है कि ऐसा हो कि यजीद को आपसे कोई सरोकार ना रहे और कोई वास्ता ना रहे, यजीद थोड़ा रिलैक्स हो जाए या चले ठीक है वो तो एक बहुत ही दूर जगह में बैठा हुआ है। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम को शहर में बैठने नहीं दिया गया, तीन खुलफा के दौर में बार बार आपको शहर से बाहर भेज दिया जाता था, शहर से फिर अंदर, कभी डरते थे कि बाहर कोई प्लान ना बना रहे हो, लश्कर तैयार नहीं कर रहे हो तो वापस बुला लेते थे, कभी किसी और रीजन की वजह से। इसी तरह यही सिचुएशन जो है, यही मशवरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोग दे रहे थे कि आप भी किसी ऐसी जगह में चले जाएं, कोई खेती बाड़ी कर लें, कोई और फलाही रिफाही काम कर लें, कोई एनजीओ खोलें हमारी जबान में, तो इस तरह के मशवरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिए जा रहे थे। कह रहे थे कि आपको कयाम नहीं करना चाहिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो मशवरे थे वो ये थे, कह रहे कि ये बजाते खुद एक दर्स है, ये बजाते खुद जो है उस समाज को समझने के लिए एक इबरत के तौर पर आज के माशरों के लिए है, इबरत है कि वो माशरा जो कि इमाम का चाहने वाला है, कदरे समझदार लोगों का, इंटेलेक्चुअल्स हमारी जबान में, और फिक्री और इनकलाबी लोगों का मुआशरा है, लेकिन इस मसले में आकर वो भी, उनमें भी बड़े नुमायां सरकर्दा चेहरे, उनकी सोच भी बड़ी डिफरेंट किस्म की आ जाती है। बकौल शहीद मुतरी कहते हैं कि वो इमाम हुसैन की के जिस्म को बचाना चाहते हैं, इमाम हुसैन इस्लाम को बचाना चाहते हैं, फर्क उनको और उसमें ये था। फिर यहाँ डिस्कस करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कयाम है उनके मकासिद और अहदाफ क्या है, तो कह रहे हैं कि एक लफ्ज में ये कहा जा सकता है, मसलन कुछ लोग कुछ थ्योरीज को पहले डिस्कस कर रहे हैं, फरमाते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इमाम हुसैन का मकसद सिर्फ और सिर्फ फासिद हुकूमत का खात्मा और आदिल हुकूमत की तश्कील था। कुछ लोग इस तरह इसकी तरह वो करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था। फिर इस नजरिए को डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि अगर इस नजरिए का मकसद ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत बनानी है, तश्कील देने के लिए कयाम किया है, तो फिर ये है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि वो इस मकसद को तो नहीं पहुंच रहे हैं, हुकूमत की तश्कील है कि फासिद हुकूमत को हटा के आदिल हुकूमत का कयाम, तो ये तो मुश्किल पॉसिबिलिटी नजर ही नहीं आ रही, लोग साथ ही नहीं दे रहे। पता चला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैठ ठुकरा दी तो फिर लोगों को चाहिए था, मेजोरिटी को उठना चाहिए था, भाई फर्जंद रसूल ने जब बैत नहीं की तो हम क्यों बैत करेंगे, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वोट ही नहीं थे, अगर इलेक्शन भी हो जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वोट जो है बहुत ही कम पड़ने वाले थे, यजीदियों को बहुत ज्यादा वोट मिलने वाले थे, शायद उनको धांधली की भी जरूरत न पड़ती, यानी समझने के लिए कह रहे हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पीछे होना चाहिए था, लश्कर भी नहीं है, वोट भी नहीं मिल रहे हैं, अवाम कबूल भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर पीछे हटना चाहिए था, उसके बगैर तो हुकूमत नहीं हो सकती, आप फरिश्तों को बुला के या विलायत तकवीनी का इस्तेमाल तो नहीं करना है इमाम ने, तो जब ताकत नहीं है हुकूमत को बदलने की, फासिद हुकूमत को तब्दील करने की, तो इमाम को अपने मकसद से फिर पीछे हटना चाहिए था, यानी अगर हम ये कहें सिर्फ और सिर्फ फासिद हुकूमत का खात्मा था तो फिर अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये आ जाएगा कि फिर तहरीक को खत्म होना चाहिए था उसी जगह में, लिहाजा जो है ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ फासिद। हाँ, उन आहदाफ में, बड़े आहदाफ में एक ये भी था कि फासिद हुकूमत को हटाना और आदिल हुकूमत का कयाम है, कह रहे हैं कि अगर मकसद हुकूमत की तश्कील हो तो फिर इंसान इस हद तक आगे जाता है जहां तक मुमकिन हो, जहां से आगे बढ़ने का इम्कान खत्म हो जाए तो उसे वापस लौटना चाहिए। एक और थ्योरी और नजरिया भी मौजूद है जिसको बाज़ औक़ात इरफानियात में भी डाला जाता है, बाज औकात जिसको शायराना एक वो भी दी जाती है मसाइब के अंदर, हमारे बरसगीर में भी ये बड़ा पॉपुलर नजरिया अभी भी बहरहाल है बहुत से लोगों के लिए, अब भी ये नजरिया मौजूद है बहुत से लोगों के लिए, या इस नजरिए को दुरुस्त तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। वो ये कि इमाम हुसैन का जो मकसद था वो शहादत पाना था, क्योंकि शहादत अल्लाह के नजदीक एक बड़ा एजाज और मनसब है, जिसके बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाया था मालिक अश्तर वाले खत में कि अली वाला का मसलन मैं और अपने और आपके लिए शहादत की आरजू करता हूँ, और कहा कि उस मनसब इलाही तक नहीं पहुंच सकता बगैर शहादत के वगैरह वगैरह। या इमाम हुसैन के भी जुमले हैं जिसमें फरमाया कि उस मकाम सैयदुल शुहदा में बगैर शहादत के पहुंचना मुमकिन नहीं है। अच्छा, इमाम जानते थे जी हुकूमत नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए फिर इमाम आए कि कत्ल हो जाएं और शहादत के आला मनसब पर फाइज हो जाएं। ये रहवर फरमा रहे एक जमाने में ये बड़ा पॉपुलर नजरिया था, अलबत्ता पॉपुलर नजरिया ईरान में था, हमारे इलाकों में अब भी है, हमारे शायरों की जबान में अब भी है, नौहों की जबान में अब भी है, कसीदों और मरसियों की जबान में अब भी है। अब मैं बाज शोरा के नाम लूंगा तो बहुत सों के मुमकिन है कि बहुत ही तलख लगेंगे, बहुत से बड़े बड़े हमारे मरसिया गो उनकी जबान में मीर अनीस दबीर और इनमें भी आप बाज अशार को उठा के देखें तो यही नजरिया पेश हो रहा होता है, माजरत के साथ। बहुत बड़े शायर हैं अदब के एतबार से, न फिक्र के एतबार से, फिक्र फिक्र करबला को पेश करने में बहुत बड़े शायर नहीं है, अदब है उर्दू में करबला को पेश करने में बहुत बड़ा। तो अदब के पीछे तो हम नहीं भाग रहे हैं, हम तो फिक्र करबला की बात कर रहे हैं। खुद राहबर भी फरमाते हैं जाहिर है कि बहुत से शोरा यानी अरबी और फारसी वगैरह में इस नजरिए को खूबसूरत अशआर के कालिब में डालकर बयान करते थे, यहां तक कि मैंने देखा कि हमारे बाज बड़े बड़े उलमा ने भी इस नजरिए को बयान फरमाया, किताबें लिखी बाकायदा इसके ऊपर। इस हत्ता जो है हुसैन शहीद फलान, मुझे याद है डॉक्टर शहीद डॉक्टर जो शरीयती साहब हैं वो भी इससे मुतासिर हैं, उन्होंने इसको भी बाज जगहों में बड़ा, जो हुसैन वारिस आदम किताब है मुझे याद आ रहा है कि उसके अंदर भी बड़ा इसको पेश किया है। उससे पहले भी कुछ हजरात ने इस तरह जो है इस थ्योरी को पेश करने की कोशिश की गई है कि इमाम हुसैन शहीद होना चाहते थे और दर्जे शहादत पाने के लिए इमाम हुसैन ने कयाम किया था। कह रहे हैं इन लोगों के नजरिए के मुताबिक गोया कि इमाम ने यह कहा कि चलो अगर जिंदा रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं तो शहीद होकर कुछ किए देते हैं मसलन, क्योंकि इसमें बाज अहादीस हैं कि जिसमें हुजूर पाक ने फरमाया था कि इन्ना लिकत्ल हुसैन हरारतुन फी कुल, इस तरह की जो अहादीस हैं जिसको हम लोग भी बयान करते रहते हैं उसकी तफसीर और तशरीह करते वक्त बाज पहलू को का ख्याल न रखना सुनने वाले के दिमाग में ये चीज ईजाद कर देता है कि भाई ये तो पहले से तय था कि इमाम हुसैन कत्ल होंगे, खून सैयदुश्शोहदा मुकद्दस लहू बहेगा तो फिर इस्लाम क्या कहते हैं मजबूत हो जाएगा। तो पहले से ही सारी जो है चीजें अंडरस्टूड थी, पहले सब कुछ तय किया हुआ था, प्लान तरतीब दी हुई थी वगैरह वगैरह, इस अंदाज से जो है इस मसले को समझना। बराबर एक बड़ी अहम इंतहाई जो है रिसर्च की गई एक बात बयान फरमाते हैं, हमारे बुनियादी माखिस में यानी रिसोर्सेज जो हमारे मास्टर सोर्सेज हैं किताबें हैं करबला को लेकर, उसमें हमें इस नजरिए की ताईद में कोई सनद नहीं मिलती है कि सिर्फ मकसद शहादत पाना है, दर्जे शहादत पर फाइज होने के लिए इमाम ने कुर्बानी दी हो, सिर्फ और सिर्फ ये हदफ था। कहते इसकी कोई हमें सनद नहीं मिलती, कोई रिवायत कोई हदीस कोई ऐसी चीज मासूम की तरफ से जो इसको ताईद करे कहे जी कि हाँ जी ये ऐसा ही है, बल्कि कहते हैं इसके उल्टा हमें जो है शरीयत मुकद्दसा कुरान और आयात में जिस शहादत का तذکرہ मिलता है उसके मानिए ये है कि इंसान एक ऐसे मुकद्दस हदफ की राह में जिद्दोजहद करे जो वाजिब हो और उस राह में फिर जो है वो कत्ल कर दिया जाए। इस्लामी शहादत का जो कंसेप्ट और तसव्वुर है वो तो इसी तरह का है, अलबत्ता शहादत के दर्जात हैं वो फिर हम और मौजू की तरफ चले जाएंगे तो फोकस इसी किताब में ही रखते हैं, अगर ना जो बेगुनाह मारे जाते हैं उन्हें भी शहादत का एक निचला दर्जा दिया है, जो अपने अहल अयाल की मेहनत मजदूरी के लिए वो जो जॉब के लिए सुबह सुबह जाता है गाड़ी से, अल्लाह ना करे रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और मर जाता है तो उसे भी शहीद का दर्जा दिया है अहादीस और रिवायात में, वो शहादत और है। और ये यहाँ पर जिस शहादत की हम बात कर रहे हैं जो हमारे करबला से रिलेटेड जो मौजू है और रहबर की किताब के अंदर जो मौजू है वो और शहादत की बात हो रही है, आगाहाना शहादत की बात हो रही है। पहले से कस्द व इरादे के साथ जानते हुए खतरात में कूदने की बात हो रही है। कह रहे हैं कि अगर इंसान सिर्फ इसलिए कदम उठाए कि मैं जाऊं और बगैर किसी वजह के कत्ल हो जाऊं, कहते हैं ये शायराना और अदीबाना कहते हैं, या तो शायराना और जो अदीबाना एक ताबीर और तरीक़ेकार और अंदाज बयां है कि जिसमें बड़ी शायरी के साथ कहते हैं मेरे खून का सैलाब जालिम को बहा कर ले जाएगा, खून से खून के दरिया में जालिम और उसका जुल्म गर्क हो जाएगा मसलन। ठीक है, खताबत में तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी बात है, शायरी में भी बहुत अच्छी चीज है, आप इसमें उर्दू अदब को और मिलाए तो बड़ी चाशनी आ जाएगी, मुमकिन है बड़े वलवले पैदा हो जाएं, लेकिन इसी को आप बैठ के एनालाइज करने लगेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं नीचे से, क्योंकि ये मंतिक और दलील और हुज्जत की और बुरहान की बुनियाद पर कायम की हुई बात नहीं है, ये शायरी है और जायज भी है, गलत भी नहीं है, हमासा ईजाद करने के लिए बाज़ औक़ात इसकी जरूरत भी पड़ती है। लिहाजा कह रहे हैं कि फिर मसला कहाँ है, कह रहे हैं कि ये हकीकत अपनी का जगह मौजूद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने जो है और करबला के इस अजीम वाक़े ने इस्लाम की आबियारी की है, जालिम के चेहरे से नकाब हटाया है, जालिम के जुर्म को अपने लहू में बहाया है, इसमें कहते हैं कि कोई राय नहीं, कोई शक नहीं है, लेकिन आपके कयाम का बुनियादी मकसद शहादत पाना नहीं था। फिर एक गुफ्तगू करते हैं कि देखें मुहक्किकीन और रिसर्च करने वालों का एक बड़ा मसला यह है कि उन्होंने करबला में इमाम हुसैन के अहदाफ क्या हैं, एजेंडा क्या था एक, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मूवमेंट चलाई उसके रिजल्ट क्या निकले दो, इन दोनों को मिक्स किया है अपनी रिसर्च के अंदर, यानी कभी वो हदफ को नतीजे को हदफ की जगह पे ले आए, हदफ को नतीजे की जगह पे ले आए, ये बहुत ही गहरी इल्मी एकेडमिकल उसके अंदर इतनी बारीक एनालिसिस होती हैं। एक इमाम का एजेंडा क्या था, दूसरा ये कि इमाम की मूवमेंट के का आउटपुट और रिजल्ट क्या निकला है। रहबर फरमा रहे हैं ये मिक्स, इसकी जो मिक्स किया गया है इसकी वजह से कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें रिसर्च करने वालों और महाक़िक़ीन के लिए कंफ्यूजन का सबब बनती हैं। फरमाते हैं मेरी नजर में मस्कूरा दोनों नजरियों के मानने वालों ने हदफ और नतीजे को आपस में मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी इमाम का हदफ नहीं था बल्कि इमाम का हदफ कोई और चीज थी। अलबत्ता इमाम इस हदफ तक पहुंचने के लिए एक तहरीक की जरूरत थी और इस तहरीक का जो नतीजा है वो इन दो सिचुएशंस को की तरफ जा सकता था, दो सूरत हाल की शक्ल में निकल सकता था, यानी एक सूरत हाल ये बनती कि हुकूमत इमाम के हाथ में आ जाती और दूसरी सूरत हाल ये थी कि इस मोमेंट के नतीजे में इमाम शहीद हो जाते, और यही हुआ कि इमाम शहीद हो गए। अब आए इमाम की शहादत के नताइज क्या हैं वो फिर बहस कर सकते हैं, खून में जालिम को बहाया और इस तरह के जो ताबीरात हैं वहां पर फिर आ सकते हैं। लिहाजा फिर पहले डिस्कस किया जाए कि इमाम आली मकाम के अहदाफ क्या हैं। एक टाइटल देते हैं, फरमाते हैं कि इमाम के जो असल हदफ था इमाम का वो एक अजीम, एक बहुत ही बड़े अजीम किस्म के वाजिब को अदा करना था, इमाम का जो बुनियादी हदफ था। करें अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कयाम का मकसद बयान करना चाहते हैं तो हमें ये कहना चाहिए कि आपका हदफ दीन के वाजिबात में से एक ऐसे अजीम तरीन वाजिब को अंजाम देना था जिसको इमाम हुसैन से पहले किसी ने भी अंजाम नहीं दिया था, यहां तक कि खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम में, जिसकी वजह यह थी कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी, सूरत हाल अगर ऐसी होती तो जाहिर है कि उसी के हिसाब से अकदाम करते ये तीन हस्तियां, सूरत हाल ऐसी नहीं थी तो उन्होंने अकदाम भी नहीं किया, और ये एक ऐसा वाजिब था जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ही अपने दौर में अंजाम दिया है, उसके बाद भी किसी अइम्मा के सामने इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी है कि इस तरह का वाजिब अंजाम दिया जाता, पर यह एक ऐसा वाजिब है जो इस्लाम के अमली फिक्री निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इंतहाई अहमियत का हामिल एक वाजिब है जिसे अदा करना बहुत ज़रूरी है, बावजूद उसके कि इमाम अलैहि सलाम इनाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम के दौर हयात पर इस पर अमल नहीं हो। कह रहे कि मैं थोड़ी सी डिटेल में आगे जाके बताऊंगा कि खुद इमाम अलैहि सलाम ने अपने दौर हयात में ये वाजिब वो अदा नहीं कर सक रहे थे, यानी उन्होंने अपना काम कर दिया। आपकी शहादत के बाद वो जो काम माशरे में उस वाजिब को अदा करना था वो उसके बाद अंजाम पाना शुरू हो गया, जो कि सानिया जहरा और इमाम जैनुलाब्दीन अलैहि सलाम और बकिया अइमा के हो सकते। यहाँ पर फिर हम आकर कह सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम के खून की जो तासीर थी वो अब आने लग गई। वो हदीस अब यहाँ पर आएगी कि इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतुन फी क़ुलूबिल मोमिनीन, इस तरह की जो अहादीस या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है इस मरहले में आके अमली शक्ल अख्तियार करती हैं, और वो तमाम बातें इस मरहले को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। कहने पहली चीज तो ये है कि इमाम आली मकाम ने इस मोमेंट और इसके नतीजे की शक्ल में एक दरसगाह की तश्कील दी है। इमाम ने पूरी एक दरसगाह ईजाद किया है जिसका काम इस्लाम का डिफेंस करना था, दीन का दिफा करना, मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ पहलू से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दरसगाह के लिए जमीन हमवार की और लोगों की तवज्जो इस दरसगाह की तरफ हो गई और एक पूरा एक दरसगाह बनाया। ये अलग बात है कि बाज़ जगहों में ये दरसगाह अभी भी दरसगाह नहीं, एक खानकाह बनी हुई है जहां जिक्र फिक्र विरद तस्बीहात के अलावा कुछ नहीं होता, यानी अभी भी उनके लिए वो खानकाह ही है न कि एक दरसगाह। वो अलग मौजू है, स्टिल ये बीमारी अभी भी मौजूद है, बाज़ लोगों ने इसी को एक खानकाह बनाया हुआ है। लेकिन कह रहे हैं असल में इमाम अली मकाम एक दरसगाह, कहते हैं बाद के अदवार में हम देखते हैं बाद के आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो मुख्तलिफ किस्म के अकदामात अंजाम दिए हैं इसी दरसगाह की बरकतों की वजह से। कह रहे हैं कि अगर ये दरसगाह नहीं होती तो वो अकदामात नहीं पॉसिबल नहीं थे। चौथे इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम, सातवें, आठवें, नवें सारे आइमा के लिए वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती अगर ये अजीम दरसगाह यहाँ पर मौजूद न होती करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो तश्कील दी थी। कह रहे कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुकूमत मिल जाती और आप पूरी ताकत और कुव्वत के साथ हुकूमत अपने हाथ में लेते तो कह रहे हैं, और अगर इस वाजिब पर अमल पैरा होने का नतीजा हुकूमत के बजाय शहादत की शक्ल में निकलाता तब भी इमाम हुसैन उसके लिए पहले से तैयार थे। मतलब दो सूरतें अगर बन जाती, एक तो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में अगर हुकूमत आ जाती तो उस सूरत में भी इमाम उसके लिए भी तैयार थे, और इमाम पहले से इसके लिए भी तैयार थे कि अगर हुकूमत हाथ में नहीं आती है उसके नतीजे में शहादत हो जाती है, कत्ल हो जाते हैं पूरे कुंबे के साथ, तो उसके लिए भी पहले से इमाम तैयार थे। असल में इमाम का फोकस था उस दरसगाह की तश्कील के लिए, उसकी तरफ इमाम जा रहे थे जहां पर सारी चीजें आ रही हैं, सब कुछ इसके उस दरसगाह के अंदर मौजूद। अगर इमाम के हाथ में हुकूमत आती है तो जाहिर है दरसगाह की जो शक्ल सूरत होगी वो एक और शक्ल में आएगी, एक रिफॉर्म की शक्ल में आएगी जो कि बराह रास्त मासूम के हाथ से मासूम की हुकूमत के की मिशनरी अंजाम दे रही है उसको। एक तो ये सिचुएशन थी, दूसरी ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है तो जाहिर है इसके नतीजे में मैं शहीद हो जाऊंगा, और शहादत के बाद ये दरसगाह खुद ब खुद वजूद में आएगी और वही काम अंजाम देगी जो हुकूमत के हाथ में आने से अंजाम दिया जाना था। तो कह रहे कि दोनों सूरतों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि नतीजा हासिल होगा, चाहे शहीद किया जाऊं या चाहे मैं जो है फासिद हुकूमत को हटाकर आदिल हुकूमत तश्कील दे दूं, दोनों सूरतों के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो हदफ है वो हासिल होगा। लिहाजा कहने की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने क्लियर थे, इतने वाजे थे कि उस वक्त के सारे अफराद की राय मुख्तलिफ होती थी, माशरे के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी राय मुख्तलिफ थी, इमाम की राय मुख्तलिफ थी, और इसलिए ज्यादा क्वेश्चनिंग है ये राय, इसलिए कि न इमाम से पहले न इमाम के बाद किसी ने दोबारा इस तरह का अमल अंजाम नहीं दिया। हद तक अंबिया के दौर में 1,24,000 पैगंबरों में से जितनों की हिस्ट्री हमारे पास है उसमें भी इस तरह की सिचुएशन हमें नजर नहीं आती। शबाहतें होना अलग बात है, लेकिन इस तरह का कयाम हमें किसी इलाही नुमाइंदे की तरफ से नजर नहीं आती। बाद में भी तो इतने सारे इमाम आए हैं, किसी में इस तरह की चीज नजर नहीं आती है। एक और जो है फिर उसके नताइज की तरफ डिस्कस करते हुए बयान फरमाते हैं कि मुनहरिफ माशरे की दुरुस्तगी का जो पहलू है इस कयाम के अंदर, कह रहे हैं कि वो इंतहाई अहम पहलू है। मुनहरिफ माशरे को उसकी असली राह पर दोबारा डाल देना, खुद हुकूमत की तश्कील और इस्लामी हुकुमरानी से ज्यादा अहमियत की हामिल है। कम से कम कह रहे हैं उससे आप नीचे दर्जे पर इसको नहीं डाल सकते हैं। हत्ता कह रहे हैं कि कुफार से जहाद करना और मुकाबला करना, यानी बैरूनी दुश्मन से लड़ना, इससे कम आप इसको करार नहीं दे सकते हैं। हत्ता अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जैसा एक अजीम फरीजा है, वो उससे जो है ना ये चीज कम नहीं है। एक मुनहरिफ माशरे को, एक मुनहरिफ मुसलमान माशरे को उसकी असली राह पर वापस ले लौटाना और लेके आना। इसी तरह फिर फरमाते हैं कि शायद मुनहरिफ माशरे को उसके रास्ते पर लौटाने का जो हुक्म है वो अल्लाह ताला की तरफ से अजीम फराइज और वाजिबात के तौर पर बयान हुआ है कुरान में, रिवायात में, आयात में। तो असल में रहबर ये फरमाना चाहते हैं कि एक पूरी सोसाइटी मुनहरिफ हो गई। हमारे फिक्र के अंदर भी बहस की जाती है कि अगर एक शख्स जो है कभी मुर्तद हो जाता है तो क्या सूरत हाल होगी, अगर पूरी सोसाइटी मुर्तद हो जाए तो उस वक्त हुक्म शरी क्या होगा। हरहाल एक पूरी सोसाइटी मुनहरिफ हो जाए, एक फर्द मुनहरिफ हो जाए, एक पूरी सोसाइटी मुनहरिफ हो जाए, पूरी सोसाइटी को मुख्तसर टाइम में दुरुस्त रास्ते की तरफ मुतवज्जे कराना और लाना है, ये कोई छोटा फरीजा नहीं है। वही अंबिया का काम है, वही पैगंबर अकरम इस्लाम के आगाज है, इमामत का काम है। फिर आगे जो किताब के अंदर टाइटल्स और वो हैं गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो यजीद का बरसर इख्तदार आना और फिर कयाम का आगाज है। यहाँ जो है रबर फरमाते हैं क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने में टोटली एक इनहराफ पैदा हो चुका था, लिहाजा इमाम के लिए ये माहौल साजगार था। अल्लाह के रसूल जाहिर आगाज इस्लाम था, इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में इनहराफ का आगाज था और माहौल ऐसा नहीं था कि करबला हो जाती। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में इनहराफ बहुत आगे चला गया था लेकिन माहौल इस तरह का नहीं था, माविया का मौजूद होना, दीगर बहुत सारे अवामिल, ये उनके लिए इस तरह का माहौल नहीं था कि अगर जो है इस तरह का कोई कयाम हो जाता तो उसके मतलूबा नताइज हमारे सामने जो है आ जाते। फिर एग्जाम्पल्स देते हैं यजीद, आगे जो है एग्जाम्पल देते हैं आज के जमाने की और बहुत ही अहम मिसाल है, वो इमाम खुमैनी की मूवमेंट का है। जाहिर है कि वो माखूज है इस्लामी हमारी तालीमात और उसी से। तो फरमाते हैं कि इमाम खुमैनी भी उसी सीरत पर चलकर इमाम खुमैनी ने ये मूवमेंट चलाई और इमाम खुमैनी के सामने भी यही दो रास्ते सामने नजर आ रहे थे और हदफ वही था कि इस्लामी सोसाइटी को उसके अकदार पर, उसकी सही पटरी के ऊपर वापस लाया जाए। और इमाम खुमैनी के सामने भी यही दो रास्ते थे कि या तो ये होगा कि इख्तदार हाथ में आएगा, हुकूमत फासिद हुकूमत को हटाकर इंसाफ पर मबनी आदिल हुकूमत का कयाम किया जाएगा इलाही अकदार के मुताबिक और उसूल जवाबित के मुताबिक, या दूसरी सूरत में शहादत होगी, शहीद कर दिया जाएगा। कह रहे कि एक जो डिफरेंस सामने आई जाहिर है कि वो ये कि इस मसले में यहाँ तक इमाम खुमैनी जो है फासिद हुकूमत को हटाया इमाम खुमैनी ने, क्योंकि अवाम ने साथ दिया और बड़ी तादाद में साथ दिया, यानी 95 से 98% अवाम ने साथ दिया इमाम खुमैनी के बरक्स। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में अवाम ने साथ नहीं दिया 100 कुछ के से ज्यादा, बाकी अगर हामी थे तो भी वो बुजदिल हामी थे जो घर से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे, खतरात को का मुकाबला करना दूर की बात है, वो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे, शहर छोड़ के भाग रहे थे, रास्ते बदल रहे थे, ऐसे हामी थे, दिल में मोहब्बतें थी, तलवारें खिलाफ थी इमाम हुसैन के, यहाँ सुरताल और थी। लोग जो है हत्ता वो लोग जो कि इमाम खुमैनी और उसके एजेंडे से एग्री नहीं करते थे तो भी फासिद हुकूमत के खिलाफ कयाम में साथ दिया उन्होंने इमाम खुमैनी के, जितने लिबरल सेक्युलर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट थे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस इसके अंदर पाया जाता है। کہ امام خمینی نے ایک حکومت کی تشکیل دے دی، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے ایک پوری درسگاہ تشکیل دے دی، اور امام خمینی نے ظاہر ہے اسی درسگاہ کی بدولت جو ہے یہ حکومت تشکیل دی. اور یعنی یہ مومنٹ کی اگزامپل دی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ہم جب سوشلی اور پولیٹیکلی اس اتنی عظیم المرتبت ہستیوں کی مومنٹس کو اگر سمجھنا چاہیں کہ جن کا بہت بڑا حصہ سوسائٹی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ امام ہیں مامومین کے لیے، وہ امام اکیلے تو نہیں، امام اکیلے نے تو دنیا میں نہیں کیا کہتے رہنا، امامت کا مقصد جو ہے صرف ایک امام کو تو بلانا نہیں تھا، لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے، بندگان خدا نے ظاہر ہے فالو کرنا ہے، اس کے نتیجے میں پھر چیزیں آگے سامنے آنے والی ہیں. تو ظاہر ہے اس کا ایک بڑا جو حصہ ہے وہ عوام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو ساتھ نہیں دیا، نتیجہ نہیں نکل سکا. بس جو ہے ہدف اور مقصد یہ ہوا کہ اسلامی معاشرے کو اس کے صحیح راستے کی طرف لوٹانا. فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا، اس عظیم واجب جو اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے کی اثر نو تعمیر، نشاط ثانیہ ریفارم کرنا، یا اسلامی معاشرے میں جنم لینے والے انحرافات سے مقابلہ کرنے سے عبارت ہے. اور اسی کو آپ مختلف عناوین دے سکتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے امر بالمعروف ہے، قیام ہے، حق کے لیے اٹھنا وغیرہ، یہ جتنے بھی مختلف قسم کے ہم ٹائٹلز استعمال کرتے ہیں وہ سب اسی کے اندر سے جو ہے ریلیٹڈ ہیں. پھر ممکن ہے کہ یہ انالائسس کچھ وہ لوگ جو کہ موٹی عقل کے ہیں ان کو ہضم نہ ہو جائے، تو دلیل کے طور پر امام حسین علیہ السلام کے فرامین کو بیان کرتے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل ہے اس کے اوپر خود امام کی وصیت ہے جو مدینہ میں آپ نے فرمائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جملے ہیں جو حاکم مدینہ نے جب بلایا دربار میں تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمائے تھے، یا مروان نے جب ایڈوائس دینے کی کوشش کی تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، یا قبائل کے نام جو خطوط آپ نے تحریر فرمائے امام حسین علیہ السلام نے، اس کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں. مثلاً ایک جملہ جو اگر نقل کرنا چاہیں تو العمر مل امام الا حاکم بالکتاب وقائم بالقسط، کہہ رہے کہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں، مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ امام کا مطلب ہی کیا ہے، لیڈرشپ اور قیادت کا مطلب کیا ہے، کہ الحاکم بالکتاب، اللہ کی کتاب کو نافذ کرے، قوانین کو نافذ کرے، خدا کے قوانین کو نافذ کرے، عدل و انصاف کی حکومت تشکیل دے، حق اور کیا کہتے ہیں باطل میں جو فرق ہے اسے واضح کر دے. یعنی امام کی اور ذمہ داریاں کیا ہیں، یہی تو ذمہ داریاں ہیں امام کی. اگر امام حسین کا قیام نہ ہوتا تو حق و باطل کے فرق کا مسئلہ مٹتا جا رہا تھا. یعنی یہ امام اصل میں ارشاد بیان کرے، جو سوسائٹی اس حالت پہ گئی ہے کہ حق و باطل کے جو فرق ہیں، یا حق پر عمل کرنے کا جو فخر ہے اور باطل پر عمل کرنے کی جو شرمندگی ہے، یہ دونوں ختم ہو چکے ہیں. نہ حق پر چلنے والا فخر احساس کا احساس کر رہا ہے، نہ باطل کام کرنے والا شرمندگی کا احساس کر رہا ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ آدمی کوئی غلط کرے تو شرمندگی فیل کرے، اچھا کرے تو شکر گزاری اور فخر کے ساتھ وہ احساس کرے. تو یہ الٹی چیزیں ہو رہی، حق پر عمل کرنے والا شرمندگی محسوس کرتا ہے، خوف زدہ ہے، ڈر رہا ہے کیونکہ میں نے اچھائی کیا، حق پر چل رہا ہوں، جو باطل پر چل رہا ہے وہ سینہ تان کے چل رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس معیار وہی ہے کہ جو باطل پر چلے تو اس کو ایکسپٹ زیادہ کرتے ہیں، جو حق پر چلے اس کو اس کے خلاف محاذ زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ ناپسند نہیں کرتے، ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایسا ٹائم نہیں ہے مگر میرے دماغ میں ایک واقعہ تھا کہ ایک خاتون مجھے کہہ رہی تھی کہ آغا صاحب میں فلاں اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتی ہوں، تو وہ کہا کہ ناگواری سے، بہت ناپسندیدگی سے ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے ہیں مجھ کو لے کر، اس لیے کہ میں اچھی طرح حجاب کر کے جاتی ہوں، جبکہ اس فیملی میں میکسیمم جو خواتین ہیں وہ حجاب نہیں کرتی ہیں، اگر کرتی ہیں تو آدھے سر کا حجاب ہوتا ہے، اور وہ چادر ایسی پہنتی ہیں جو بار بار پیچھے سے گرتی رہتی ہے، اور اسے ٹائم ٹو ٹائم اٹھاتے ہیں، خاص کر اذان کے ٹائم پر، تو مجھے وہ کہتے ہیں بیک ورڈ، پتہ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. تو یہ جب سٹینڈرڈ یہاں آ جائے، لیول ادھر آ جائے لوگوں کا، تو پھر ظاہر ہے کہ واضح ہے یہ چیزیں، وللعمری مل امام الا کد. پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا کام کر دکھایا جس سے لوگوں کے ضمیر جاگ گئے. इसलिए आप देखते हैं, फरमाते हैं राहबर की, इसलिए आप देखते हैं कि इमाम की शहादत के बाद ये के बाद दीगर कई इस्लामी तहरीकें वजूद में आई हैं। इन तहरीकों को कुचलने की जाहिर कोशिश की गई, वो सारी जगह अपनी जगह पर है, लेकिन कहने की बहुत सारी तहरीकें वजूद में आई। वो लोग जो जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था इमाम हुसैन के कयाम से पहले कि क्या किया जाए, कुड़ते थे अंदर से, अच्छे लोग थे, कुड़ते थे, इंकलाबी थे, लेकिन वे आउट नजर नहीं कि क्या करना है भाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद कह रहे उनको रास्ता नजर आया, उनके सामने आ गए, उन्होंने कहा अच्छा ये रास्ता है, ये तरीका है, हमें इस तरह, इसीलिए कयाम की जो बहुत सारी तहरीकें हैं वो जो है आपके बाद वजूद में आई। बस कह रहे हैं कि इमाम हुसैन के कयाम के आगाज से पहले खवास भी इस सिलसिले में कोई कदम उठाने के लिए तैयार न थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कयाम के बाद जुल्म से नफरत की रूह जिंदा हो गई। ये वो अजीम दर्स है जिसे करबला ने दूसरों को, मसलन दूसरों को दिया है, ये अजीम दर्स जो है वो है जो करबला ने दूसरों को दिया है। इस वाक्य की अजमत की वजह से हम देखते हैं कि आज जब आपको इस्लाम फलता फूलता नजर आ रहा है, या इस्लामी तालीमात दुरुस्त तरीके से नजर आ रही हैं, या जो है ये रूह है बिलाली और अजम हुसैनी अगर कायम है आज, और आज तकरीबन हम देखते हैं कि बहुत सारी बातिल तहरीकें भी, बनी अब्बास जैसे उन्होंने भी किया है, बनी उमैया ने भी एक जमाने में किया, बनी अब्बास ने तो बहुत ज्यादा यूज करने की कोशिश की है अहले बैत के नाम को, करबला के नाम को, इमाम हुसैन के नाम को, और अभी भी बहुत सारे लोग जो कि सरापा पसंद तालिबान जैसे लोग, मसलन अबू बकर अल बगदादी भी बाज़ औक़ात इस तरह के जुमले कह देता है, और खवारिज और दाइश भी इस तरह के जुमले कह देते हैं, बलाखिर जाके जो है करबला से मुत्तसिल हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सारी जो चीजें आज देखते हैं कि इस्लाम एक जिंदा है और यही असल है, करबला असल है के तौर पर हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, दुनिया की अक्सरियत वाजे और काते एक्सेप्ट कर रही है, वलो वो अकीदा है इमाम हुसैन को मानते हो या फॉलो करते हो ना करते हो, लेकिन उनके इकदाम को सराहते हैं, तो उसके पीछे जो है बेसिक वजह यही है कि आपने वाकई इस्लाम को महफूज किया है। देखिए साथ बढ़ते हैं, जो थोड़ा सा वक्त हमारे पास बचा है वो हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा, हजरत सानिया ज़ारा ज़ैनब सलाम अलैहा के हवाले से, इस किताब के ये जो वॉल्यूम है इसमें बहुत ज्यादा डेटा मौजूद नहीं है। जो बीबी का चैप्टर है उसमें फिर एक कुल्ली डिस्कशन शुरू होती है उस बाद अज वाक़े करबला मूवमेंट को लेकर, तो उसमें एक हिस्से के बाद जो बल्कि ज्यादातर जो हिस्सा है वो चौथे इमाम के जो है सीरत तय्यबा और किरदार को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो है जितना है उसको हम तेजी के साथ डिस्कस करते हैं। फरमाते हैं कि हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा तमाम जो इमामों की बेटियां हैं उनमें मुनफरिद मकाम रखने वाली हैं, मुनफरिद किस्म की हैसियत हासिल है। आइमा की जो बेटियां हैं सब एक जैसे लेवल की नहीं थी, जाहिर है सारी औलादें एक जैसे लेवल की नहीं थी, बाज़ औलादों तो बड़े मसाइल भी पैदा कर दिए हैं शुरू शुरू में, लेकिन कि हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा का जो मुनफरिद किरदार है, मुनफरिद किस्म का जो है शख्सियत सामने नजर आती है। वाकई करबला से पहले हालात को समझती थी और वाकई करबला के बाद भी बेहतरीन अंदाज से जो है अपने किरदार को निभा रही हैं। करबला के वाकये से पहले बहुत सारे बुजुर्गान मर्द हजरात जो कि उस वक्त जो है सोसाइटी में मर्द ज्यादा एक्टिव होते थे, बाज हवालों से ख्वातीन को दबाने की कोशिश रही है इस्लाम से पहले, और वो खू और वो जो मिजाज था अरबों वाला वो कमोबेश मौजूद था, अगरचि इस्लाम ने काफी तब्दील किया था चीजों को, ख्वातीन को एजुकेशन न देना, दूसरे दर्जे का इंसान समझना वगैरह वगैरह। करें कि उसमें देखते हैं कि मेन स्ट्रीम में रहने वाले एक्टिव लोग और अहले बैत के करीब रहने वाले, पैगंबर खुदा के करीब रहने वाले जो बुजुर्ग और हस्ती समझे जाते थे, इंटेलेक्चुअल समझे जाते थे, बड़े इनकलाबी रहनुमा समझे जाते थे, वो जो है कंफ्यूजन के शिकार थे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कयाम किया, लेकिन हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा कंफ्यूज नहीं थी। देखें ऐसा नहीं है कि जैसे वो अफसोस के साथ बाद औकात कहते हैं वो बहन भाई की वजह से आ गई, ऐसी बात नहीं है, बहन इमाम की वजह से आई, बहन ने देखा इमाम वक्त ने कयाम किया है। चलिए अगर फर्ज करें कि चचा कयाम करते तो हजरत ज़ैनब नहीं आती, फर्ज करें अगर ये इमाम हजरत ज़ैनब के चाचा होता है ये इमाम मासूम या बाबा क्याम करते तो हजरत जैनब सलाम अलैहा नहीं आते, या इमाम के जो हजरत जैनब सलाम अलैहा के आगे जाकर फर्ज करें छठे इमाम अगर ये करबला बर्पा करते और हजरत जैनब होती उस वक्त तो क्या नहीं आती? कहती नहीं नहीं आप तो जो है ना मेरे वो जाके आगे बुजुर्ग पड़ पोते लगते हैं तो मैं तो नहीं आऊंगी, मेरे भाई जाएंगे तो आऊंगी। ये क्या ये अजीब गरीब किस्म की मेंटालिटी है हमारी, तरीकों से बयान होते हैं बाज़ औक़ात जो है मसाइब की शक्ल में, कभी शेर व नसर की शक्ल में। कंफ्यूज हैं लोग, समझदार लोग। सानिए जहरा के लिए वाकई करबला से पहले हालात क्लियर हैं, अंडरस्टैंड कर रही है सोसाइटी कहाँ गई है। ये जो अब ये एक एकदम अगर इमाम वक्त कर रहे हैं तो इसको होना जरूरी है, इसको होना चाहिए, एक लफ्ज नजर नहीं आता है कहें पर। एक बराबर भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई एक लफ्ज नजर नहीं आता कि हजरत जैनब ने कहें क्वेश्चन किया हो कि क्यों जाएं, क्यों का जरूरी है, कोई तरीका और नहीं निकल सकता है, कोई डायलॉग हो, कोई और रास्ता हो, कोई और ऑप्शन हो, कोई एक लफ्ज नजर नहीं आता है कहें पर। इसलिए फरमाते हैं वाकई करबला से पहले बहुत से बुजुर्गान दीन कंफ्यूजन थे, कंफ्यूजन थे, परेशान थे, लेकिन हजरत जैनब सलाम अलैहा के लिए सारे मसाइल वाजे थे और क्लियर थे। फरमाते हैं कि वाकई करबला बगैर हजरत जैनब कहते हैं कि कभी जिंदा न रहता। यह हकीकत है, शायराना बातें नहीं है, ये किसी शायर की शायरी नहीं है, हकीकत है, ये वाकई ऐसा ही है। फिर एक ताबीर करते हैं, फरमाते हैं हजरत जैनब सलाम अलैहा खातून के लिबास में, खातून की शक्ल व सूरत में दूसरा हुसैन है। बहुत बड़ा जुमला है, क्योंकि हम कह सकते हैं हुसैन सानी हजरत जैनब सलाम अलैहा को, यानी वो हुसैन जो असर आशूर के बाद से नुमाया तौर पर सामने आ रहा है, अगरची कबल आशूर शक्ल में था, अब बाद आशूर एक और शक्ल में वही इमाम हुसैन सामने आ रहे हैं। करे दो मरतबा बेचैनी का इजहार किया है, एक मरतबा जब जनाब मुस्लिम की शहादत का वक्त, शहादत की खबर दी रास्ते में, तो आपने खतरे का एहसास किया हजरत जैनब सलाम अलैहा की, कहें रास्ते में ही कोई, इससे पहले कि हम अहदाफ मकासिद की तरफ बढ़े, रास्ते में ही कोई कोई हादसा ना हो जाए, उस वक्त जो है अपने इस खतरे का एहसास किया और बयान फरमाया। दूसरा शब आशुरा के दिन, कि जिसके रावी भी चौथे इमाम है, इमाम जैनुल आबदीन अलैहि सलाम है, और उस वक़्त जब हुज्जतें तमाम करने के बाद इमाम अलैहि सलाम ने वो अशार पढ़े, या दहर लकल उफ़ुल खलील वाले अशार पढ़े, तो उस वक़्त जो है हजरत जैनब सलाम अलैहा ने राहबर की ताबीर खतरे का एहसास किया और अपनी परेशानी का इजहार किया कि भाई ये तो मामला जो है ना सीरियस की तरफ जा रहा है, और जाहिर है कि एज एक खातून के और नेचुरल जो खुदा दादी एक रद्द अमल सामने आना चाहिए था, और तबीई तौर पर वो सामने आया और आना जरूरी भी था बीने एक खातून के, और ये खुदा दादी है। कठिन मरहला जो है वो आशुरा के बाद शब आशूर का एक शॉर्ट पीरियड, बड़े इशारा किया रहबर ने, हाईलाइट किया इसको, जिसकी तरफ कम मतवजे, कि जिसमें क्लियर नहीं है कि अब यजीदी करने क्या जा रहे हैं। वाकई आशुरा हो जाता है, खेमों की लूटमार शुरू हो रही है वगैरह, सारी चीजें हो रही हैं, और अब बहुत ही कठिन किस्म के हालात हैं। उन हालात में एक बड़ा मसला ये है कि नेक्स्ट ये लोग क्या इनका डिसीजन है, कैदी बनाएंगे, कत्ल करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। यानी कि ये बड़ा, कहते हैं कि ये बड़ा तल्ख टाइम था जो कि उस वक्त हजरत जैनब, और इस वक्त को कहते हैं हजरत जैनब ने एक शेर दिल खातून की तरह बर्दाश्त किया है और सामना किया है उसको। ये जो कहते हैं तलवार की खून पर फतह, तो ये हकीकत है, शायरी के साथ साथ ऐसी शायरी है जो हकीकत को रिफ्लेक्ट कर रही है। कह रहे हैं कि लेकिन ये फतह तभी मुमकिन हो सकती है जब हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा का वजूद होता। अगर हजरत जैनब सलामुल्लाह न होती तो तलवार की खून पर, खून की तलवार पर फतह का जो कंसेप्ट है कि खून ने तलवार पर फतह हासिल की है, गलू ने मसलन हमलों पर फतह हासिल की है, ये कंसेप्ट कह रहे हैं कि एक शायरी बन के रह जाता, हकीकत में ढल नहीं सकता था। और हकीकत में डल गया हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहि की वजह से, क्योंकि हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहि ने इसको एक हकीकी शक्ल में डाला और इस फतह को वाकयान जो है कि खून की तलवार पर फतह के तौर पर अमली शक्ल दे दी इसकी। फिर एक और अहम नुक्ता जो बयान कर रहे हैं वो ये है कि देखें मुस्लिम जो हिस्ट्री है उसमें आप खासकर जो इस बराह रास्त इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली हिस्ट्री है उसमें आप कभी ये ना कहें कि इस्लाम की तारीख में औरत का जो किरदार है वो गोशे वाला है, किसी गोशो किनार में उसका तस्करा होता है, मेन स्ट्रीम के अंदर उसका कोई कोई भी मेन स्ट्रीम रोल है ही नहीं औरत का। कह रहे हैं कि ये गलत कंसेप्ट है, कह रहे हैं कि औरत ने तारीख बनाई है, वो किसी तारीख के गोशे में खड़ी हुई चीज का नाम नहीं है। ये तारीख में औरत भी है लेकिन किसी किनारे पे बैठी है, एक औरत का जिक्र है। कह रहे हैं कि हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो किरदार है वो इस बात को गलत साबित करता है और ये बताता है कि इस्लामी तारीख को बनाने में खातून का किरदार है और बड़ा अहम है और मुअस्सिर है और एक ऐसा किरदार है कि जिसकी मिसाल किसी और मर्द की तारीख मुस्लिम माशरे में किसी मर्द की तारीख में के अंदर नजर नहीं आता है, मुनफरिद है, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का है। फिर हजरत जैनब सलाम अलैहा के उस असारत के वक्त को डिस्कस करते हैं कि जिसमें आपने खुतबात देकर कैसे मोमिन को झंझोड़ा और कैसे उनके कौल व फेल में जो तजाद था उनकी उनके अकीदे और अमल में जो तजाद था हमारी जबान में उसको कहते हैं बरमला कर दिया। फरमाया जैसे आज की जबान में बात करें तो राबर ने भी इन्हीं जुमलों को इस्तेमाल किया है, तुम समझते हो कि तुम अब भी एक इनकलाबी हो, एक सहाबी हो, तुम्हारी क्या हकीकत अब भी एक सहाबी होना और एक इनकलाबी होना है। हम तो इनकलाब बरपा करने आए थे मक्के से और मदीने के अंदर फिर वापस मक्के आ गए, तो एक इनकलाबी बनकर आए थे, क्या तुम अब भी एक इनकलाबी ही हो, वही इनकलाबी जज्बात तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, कूफे वालों मदीने वालों मक्के वालों मसलन वगैरह वगैरह। तो कहने की हजरत जैनब ने उनको हकीकत आईना दिखा दिया और कहना कि नहीं अब तुम वो नहीं रहे हैं, आज मुराआत और उसकी वजह से ना तुम्हारे सोचें बदल चुकी हैं, कौल फैल में तुम्हारा तजाद तुम्हारे तजाद पाया जाता है। ये डिस्कशन किताब में सानिया जहरा सलामुल्लाहि अलैहा के बारे, उसके बाद इमाम चौथे इमाम के हवाले से इस किताब के अंदर कुछ डिस्कशन है जिसमें बिल्कुल मुनफरिद किस्म की चीजें हैं वाकयान। उसमें एक खत है इमाम जीनुल आबदीन अलैहि सलाम का जो हम भी जिसको ज्यादा बयान नहीं करते और ज्यादा इसका तज्जा भी मौजूद नहीं है, वो शहाब ज़हरी के नाम पर चौथे इमाम का वाक़िया करबला के बाद खत है कि इंशाल्लाह आने वाले उसमें हम डिस्कस करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।